الحمد لله وكفى وسلام على المصطفى أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم تحصیل بہشتی زیور، بلکہ کہنا چاہیے کہ اصل بہشتی زیور ہی کا یہ مضمون حقوق والدین والدین پڑھتے ہیں. اصل بہشتی زیور کہنے کا مطلب کیا کہ تسہیل کے اندر بہت ساری عبارات ایسی ہیں جو کہ اپ ڈیٹ کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جو حضرت مولانا حکیم امت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان کو جو ہے وہ آسان بنا کر کے پیش کیا گیا ہے، یا جو نئے کنٹمپرری مسائل ہیں، موجودہ دور کے مسائل ہیں، وہ تسہیل بہشتی زیور کے اندر شامل کیے گئے ہیں. جبکہ اصل بہشتی زیور جو ہے وہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ہی لکھے ہوئے الفاظ ہیں. تو یہ جو مضمون ہے یہ وہی نقل کیا گیا ہے. تو اس میں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل فرما کر کے پھر اس کے بعد اس موضوع کو شروع کیا، اور اس کے اندر پھر بہت ساری احادیث وہ نقل فرمائی والدین کے حقوق سے متعلق. اس میں سے ہم نے چوتھی حدیث، یا جس کو کہ اثر کہنا چاہیے، اثر صحابہ، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول ہے. تو ویسے تو احادیث کے مجموعے کے اندر صحابہ کرام کے اقوال بھی شامل کر لیے جاتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر صحابہ کے قول کو الگ رکھا جائے تو ان کو آثار کہا جاتا ہے. تین نقطوں والا سا، اس سے بنتا ہے یہ آثار، آثار صحابہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سب سے بہتر روزی اپنی کمائی ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں داخل ہے. ٹھیک ہے، تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں داخل ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب باپ ضرورت مند ہو تو بیٹے کے مال سے کھانے میں مضائقہ نہیں ہے، لیکن ضرورت کے مطابق خرچ کرے، فضول خرچی نہ کرے. تو ضرورت میں اور ضرورت پر خرچ کرنے میں اور فضول خرچی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ کیسے فرق ڈیفائن کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، کیا فرق ہوتا ہے ضرورت میں اور فضول خرچی میں؟ دوسرا لفظ ضرورت کے علاوہ جو دوسرا لفظ یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خواہش. ٹھیک ہے، خواہشات. تو ہر انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ضروریات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر اس کا ایک مناسب گزارا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مناسب گزارا نہیں ہو سکتا، وہ ضروریات کہلاتی ہیں. مناسب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ گزارا انسان کا جو ہے نا وہ سانس لینے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ صرف سانس لیتا رہے اس کا گزارا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اچھا کھائے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو بھائی گزارے کے لیے تو ایک کھجور بھی کافی ہوتی ہے نا. ایک کھجور آپ کھا لیں تو آپ جو ہے وہ سائنسی تحقیق کے مطابق 3 دن تک آپ کا انتقال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک کھجور کھا لیں تو 3 دن تک جو ہے وہ آپ کا انتقال نہیں ہوگا، شاید اس کے بعد ہو جائے انتقال اگر خالی ایک کھجور کھائی ہوگی، لیکن آپ نہیں مریں گے. تو کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی گزارا تو ہو رہا ہے ایک کھجور کے اوپر؟ تو اس وجہ سے اس کی ضرورت جو ہے نا وہ صرف ایک کھجور ہے پر 3 ڈیز. 3 دن پر اس کو ایک کھجور مل جائے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. کیا خیال ہے، اس طرح سے کریں گے گزارا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا اس طرح سے گزارا. ٹھیک ہے، तो जरूरत का मतलब जो है ना, फिर वो ये नहीं कि गुजारा हो जाए जिसके ऊपर, यानी मरे ना वो बंदा, बल्कि जरूरत के लिए जो है फिर एक मुनासिब का लफ्ज भी इस्तेमाल करना होगा, और मुनासिब के अंदर फिर तफसील आ जाएगी कि भाई किसकी क्या जरूरत है, किसी क्या जरूरत है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो देहात में रहता है, गांव में रहता है, ठीक है, तो गांव में रहने वाले की जरूरियात जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, और एक शख्स शहर में रहता है, ठीक है, तो शहर में रहने वाले की जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, हालांकि दोनों इंसान ही हैं, दोनों आदम अलैहिस्सलाम ही की औलाद है, दोनों की दो आंखें होती हैं और दो टांगे होती हैं और दो हाथ होते हैं, है ना, बायोलॉजिकली स्पीकिंग देहात में रहने वाला और शहर में रहने वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, उसके बॉडी सेल्स डिफरेंट नहीं होते, इसके बॉडी सेल्स डिफरेंट नहीं होते, हाथ पैर तो चले बड़ी बड़ी चीज है ना, इवन सेलुलर स्ट्रक्चर भी जो है वो दोनों का सेम होता है, ठीक है ना, अंदर की एनाटमी दोनों की सेम होती है, लेकिन जरूरियात सेम नहीं होती, उसको अलग चीजों की जरूरत होती है और इसको अलग चीजों की। अच्छा, खाली ये कि जरूरियात उसकी जगह की भी वजह से कि भाई वो उसको जो है वो नलके का पानी चाहिए, उसको ट्यूबवेल का पानी चाहिए, नहीं, बल्कि उसकी आदत भी डिफरेंट होती है, राइट, जो गांव में रहने वाला होता है उसकी आदतें भी डिफरेंट हो जाती है ना, हमने सूरह बनी इसराइल के तहत जो बातें पढ़ रहे हैं, शाकिला वगैरह की जो सारी तफसील डिस्कस करी है, तो उसके अंदर आदत का लफ्ज कितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इंसान की आदत बन जाती है, ठीक है, अब वो आदत जो होती है ना वो उसकी जरूरत के ऊपर बड़ा असरअंदाज होती है, तो गांव के रहने वाले शख्स की आदत ही डिफरेंट है, इसकी बुनियाद पर उसकी जरूरियात डिफरेंट है ना, उसका जो है वो लस्सी शस्सी के बगैर उसका गुजारा नहीं, ठीक है ना, और जो शहर में रहने वाले हैं ज्यादातर जो कराची टाइप के शहर होते हैं वहां पे उनका चाय के बगैर उनका गुजारा नहीं, ठीक है, तो अब वो लस्सी उसकी जरूरत बन गई, इसकी जो है वो चाय जरूरत बन गई, तो जरूरियात का चैप्टर भी जो है ना ये बड़ा वसी है, ये असल में आपको कहना चाह रहा हूं, जरूरियात में भी बड़ी तफसील होती है, ठीक है ना, तो दो इंसानों की जरूरियात सिमिलर नहीं होती हैं, मर्द और औरत दोनों एक ही घर के अंदर रहते हैं, शहर के अंदर रहते हैं, राइट, एक ही माहौल के अंदर रहते हैं, भाई बहन एक ही घर, राइट, लेकिन भाई की जरूरियात अलग हैं, बहन की जरूरियात अलग हैं, क्या नहीं है ऐसा, राइट, जरूरियात अलग अलग हैं ना, ठीक है, तो फिर जरूरियात फिर किसी किताब के अंदर नहीं लिखी होती ना कि ये इसकी जरूरत है और इसकी ये जरूरत है, किताब को तो पढ़ करके आपको जरूरत नहीं समझ में आएगी, ठीक है, तो जरूरत कैसे पता चलेगी किसी इंसान को कि उसकी कितनी जरूरत है या उसके माँ बाप की कितनी जरूरत है, ठीक है ना, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक चीज दी है जिसका नाम है अकल शरीफ, ठीक है, अल्लाह ताला ने क्या चीज दी है, अकल शरीफ, अगर शरीफ हो तो, ठीक है, तो बहरहाल याद आ गया बचपन की जो है वो, अलहमदुल्ला कभी फिल्में शिल्में उस तरह की तो देखी नहीं, लेकिन नाम सुनने को बहुत आता था, एक थी पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस थी बाबरा शरीफ, ठीक है ना, तो वो मजाक बन गया था कि तुम तो इतनी शरीफ हो जैसे बाबरा शरीफ, ठीक है, यानी एक्टर जो है एक्ट्रेस जो है वो कितनी शरीफ होती है नाच गाने वाली, लेकिन वो एक मजाक बन गया था कि तुम तो बाबरा शरीफ जैसी शरीफ हो और तुम तो जलेबी जैसी सीधी हो, ठीक है, जलेबी सीधी तो नहीं होती ना, जलेबी तो ट्विस्ट हुई भी होती है ना मुस्तकिल, तो वो जलेबी जैसी सीधी और बाबरा शरीफ जैसी शरीफ, ठीक है, तो इस वजह से ऐसी ऐसी शराफत नहीं चाहिए ना, तो अकल हो जो कि वाकई शरीफ हो, तो वो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, तो अकल के इस्तेमाल से पता चलता है, और दूसरी बात ये कि अकल भी जो है ना वो भी बेशक भोली भाली सी हो, शरीफ सी हो, लेकिन वो सही फैसला नहीं कर पाती है, तो उसके लिए फिर किस चीज की जरूरत पड़ती है ये तो आप ही बताएंगे, दूसरी कौन सी नेमत है जिसकी जरूरत पड़ती है, जरूरत डिफाइन करने में कि मेरी क्या जरूरत है, या दूसरे शख्स की क्या जरूरत है जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है उसकी क्या जरूरत है, जिसको डिफाइन करने के लिए अल्लाह ताला ने दूसरी कौन सी नेमत दी है, पहली नेमत तो अकल, ठीक है ना, अकल शरीफ, ठीक है, दूसरी नेमत जो दी है वो ये ना मक्खन लगाने के इन्होंने लिखा है शेख, राइट, नहीं, ठीक है, शेख तो वसीला है, ठीक है ना, पहला जवाब बिल्कुल सही है, इल्म, ठीक है ना, इल्म, राइट, तो इल्म सही होगा और अकल शरीफ होगी, यानी गुंडागर्द अकल नहीं होगी, है ना। गुंडागर्द और जो है ना वो बदतमीज किस्म की, और जो है वो यानी बदनीयत अकल, राइट, बदनीयत अकल नहीं होगी बल्कि शरीफ अकल होगी, और उसके साथ फिर इल्म होगा, तब जो है ना फिर जरूरत की डेफिनेशन भी सही कि क्या, कि मेरी क्या जरूरत है, या मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनकी क्या जरूरियात है। ठीक है, तो ये 10 मिनट कब तक जो आपका दिमाग खाया गया है वो इस वजह से कि अकल और इल्म, राइट, इसकी अहमियत आपको समझ में आ जाए कि इन दोनों चीजों के बगैर आप अपनी या अपने साथ जो दूसरे लोग रहते हैं उनकी जरूरत भी डिफाइन नहीं कर सकती। जरूरत कभी आप जो है वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अकल शरीफ सबसे पहले तो इन दोनों चीजों के ऊपर कि अल्लाह ताला ने अकल दी है और अल्लाह ताला ने इल्म का कोई वसीला दिया है, चाहे वो शेख हो, चाहे अच्छी किताबें हो, चाहे अच्छा माहौल हो, राइट, अल्लाह ताला ने ये वसीले हमें अता फरमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने कितने असल दो चीजें जिनकी मुझे जरूरत है ना, जो मेरी शदीद तरीन जरूरत है टू डिफाइन माई जरूरत, इल्म और अकल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ना देते तो मैं क्या कर लेती, क्या कर लेती अगर ना देते मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो इनकी कदरदानी करनी, यानी इनको सही से इस्तेमाल करना, ये कदरदानी कहलाती है। शुक्र अलग चीज है, कदरदानी अलग चीज है। ठीक है ना, कदरदानी का मतलब ये होता है कि किसी चीज को अब इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से करना, ये उसकी कदर होती है। उसको इग्नोर करना, हाँ भी शुक्र बड़ा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अकल अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म अता फरमाया, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये कदरदानी नहीं होगी। ठीक है, तो बाप की जरूरत, बेटे की जरूरत, तो बाप जो है वो मालदार है, अगर मालदार होने के बावजूद बेटे का माल लेता है तो वो उस पर कर्ज है। यही कौल इमाम अबू हनीफा का है, उसी पर फतवा है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से रवायत करते हैं कि बाप के लिए बेटे के माल की हक नहीं सिवाय इसके कि उसे खाने पीने कपड़े की जरूरत हो। ठीक है, और आज जो है वो इसकी इसकी मजीद तशरीह की जरूरत पड़ेगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने बिल्कुल ठीक कॉल कहा है, ये नहीं कि वो नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने गलत कहा है, लेकिन इसकी अब तफसीर होगी, इसको खोला जाएगा कि इस वक्त जो है ना वो खाना पीना और कपड़ा, जो ये बुनियादी जरूरियात हैं, अब इनकी जो है ना वो कैसे, इसका वो कैसे चलेगा ये मामला ना। आजकल कपड़े की जरूरत, अब जो है वो बिस्तर की चादर आपने अब्बा हुजूर को पकड़ा दी कि भाई ये कपड़ा है ना, अब आप इसको ओढ़ करके अपना गुजारा करें, ये भी तो कपड़ा ही है, राइट, ये भी तो कपड़ा ही है, तो आप इसको ओढ़ करके अपना गुजारा करें। तो नहीं, पुराने जमाने में कपड़ा जो है वो एक वन पीस किस्म की चीज होती थी, लोग उसको ओढ़ लिया करते थे, वो कपड़ा होता था। आज जो है वो सिला सिलाया कपड़ा, ठीक है ना, रेडीमेड कपड़ा, एक जमाने में दर्जी से बना हुआ कपड़ा होता था, वो इंसान ओढ़ लेता था। उससे पहले जो है वो बगैर सिला हुआ कपड़ा होता था, उसको इंसान ओढ़ करके अपना काम चलाता था। फिर दर्जी से बना हुआ कपड़ा आया, फिर उसके बाद जो है वो मशीनों के ऊपर बना हुआ कपड़ा आया। ठीक है ना, तो अब कपड़े के अंदर ये तफसील आ गई ना, आज के हिसाब से कपड़े की क्या डेफिनेशन है। इन्होंने लिखा मेडिसिन भी जरूरत है, ठीक है ना, तो मेडिसिन जो है वो खाने की तफसील के अंदर आ जाएगी, खाने की, मेडिसिन भी तो आप खाते ही है ना, या खाने की वजह से जो कभी जो जो बीमारियां पैदा होती हैं वो ज्यादातर खाने की वजह से ही पैदा होती हैं, तो फिर मेडिसिन भी खानी पड़ती है। ठीक है, और अगर मुंह से नहीं खानी पड़ती तो फिर जो है वो इंट्रावीनस जो है वो खानी पड़ती है ना, लेकिन खाने के अंदर फिर मेडिसिन भी शामिल हो गई, और पीने के अंदर तो फिर वजअलना मिनल माई कुल्ला शयइन हय अफला युमिनून, है ना, हमने हर चीज को पानी से पैदा किया, तो पीने के अंदर फिर हर चीज समाज इस तरह से आ जाएगी। बहरहाल, तो हमारे फुकहा कोई बात कहते हैं तो अब वो जो है ना वो लिटरल मीनिंग में हम उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हर वक्त, बल्कि उसकी तफसीर की बात की जरूरत पड़ती है जमाने के और हालात के हिसाब से। तो इस वजह से आज जरूरत की डेफिनेशन जो है ना वो इमाम अबू हनीफा से नहीं ली जाएगी, ठीक है ना, कि उनकी कब्र पे जाकर के पूछा जा रहा है कि जी आज हमारी क्या जरूरियात है, इमाम अबू हनीफा साहब आप बताइए, और कब्र से आवाज आएगी, नहीं, इमाम अबू हनीफा की जो बातें हैं वो तो किताब में लिखी हुई हैं, आज की क्या जरूरियात है ये आज के शेख साहब बताएंगे, ये आज के मुफ्ती साहब बताएंगे, जो जिंदा हैं सलामत हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं वो बताएंगे। ठीक है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हम इसी पर अमल करते हैं और यही अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। अगली जो हदीस मुबारक ही है कि कंजुल उम्माल में है कि तुम्हारी औलाद अल्लाह ताला का अतिया है, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं लड़कियां देते हैं और जिसको चाहते हैं लड़के देते हैं, बस वो औलाद और उनका माल तुम्हारे लिए है जब तुम्हें जरूरत हो। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से इस मसले की ताईद होती है जो मसला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला के कौल से अखज किया था। अभी तो उन्होंने अखज नहीं किया था, अभी तो उन्होंने तो कई सौ साल पहले अखज किया था। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि अभी ऊपर जो हमने पढ़ा है ना उनका कौल, ठीक है ना, तो वो जो अभी हमने लिखा है ना, ठीक है, यानी इस दौरे जमाने के जो उलमा हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा, तो उन्होंने अभी ये बात हमें बताई। ठीक है, इमाम अबू हनीफा ने अभी नहीं बताई, उन्होंने तो कई सौ साल पहले बताई थी और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने भी कई सौ साल पहले उसको लिखा था। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से इस मसले की ताईद होती है जो इमाम जो मसला अभी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने आयशा सिद्दीका के कौल से अखज किया था। नीज हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्ह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद, तू और तेरा माल अपने बाप के लिए है, कि यही तफसीर की है कि इससे मुराद नान और नफका है। ठीक है, यानी वो जो हदीस है ना जो कि तफसीर की किताब के अंदर जहाँ पर के तरगीब दी जा रही होती है, तफसीर की किताब के अंदर ज्यादातर जो है ना वो फिकी मसाइल नहीं होते, उसके अंदर तरगीबी बातें होती हैं। तो जब हमने सूरह बनी इसराइल जो अभी हम पढ़ रहे हैं सूरह बनी इसराइल, उसी के इब्तिदा के अंदर जहाँ पर हुकूक की आयात आई थी, वो बिल वालिदैन एहसाना, राइट, तो वहां पर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने वो वाली हदीस नकल करी थी कि एक बेटा और बाप जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और बेटे ने कहा कि मेरा बाप जो है वो, यानी इस वो था ना कि वो मेरा माल ले लेता है और ये, तो बाप ने जो है वो इससे पहले कि बाप कुछ कहता, नबी अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुम वो शेर सुनाओ जो कि यहाँ आने के रास्ते में तुमने पढ़े थे, वो शेर तुम सुनाओ। तो बाप ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हर बात जो है ना वो हमारा ईमान आपके ऊपर और बढ़ा देती है, क्योंकि वो जो शेर मैंने पढ़े थे वो मेरे और मेरे परवरदिगार के अलावा किसी ने नहीं सुना, किसी को नहीं पता कि मैंने वो शेर पढ़े थे, लेकिन आपको पता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने आपको बता दिया है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह ताला ने आपको बता दिया है। ठीक है, तो फिर बाप ने जो है वो अशआर पढ़े कि मेरे बेटे मैंने तुम्हारे लिए ऐसे किया, मैं तुम्हारे लिए रातों को जागता था, मैं तुम्हारे लिए जो है वो अपने आप को हलकान करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, और आज तुमने जो है वो मुझे ये हक, ये मेरा मुझे सिला दिया है इसका। ठीक है, कि तुम जो है वो मेरे साथ लड़ते हो और मुझे जो है वो ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो कम से कम तुम मेरे साथ जो है ना वो उतना ही मामला कर लेते जैसे कि एक अच्छा पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ किया करता है। ठीक है, तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने वो शेर पढ़ सुने ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस बेटे का हाथ जो है उसके बाप के हाथ में दिया और फरमाया कि तू और तेरा माल, तू और तेरा माल तेरे बाप के लिए है। ठीक है, तो इसकी तफसीर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही फरमाई, यही इस किताब के अंदर लिखा है ना कि इससे मुराद नान नफका है, जरूरत। ठीक है, क्योंकि वो जो बाप थे ना, जो वो जो सहाबी थे जिन्होंने वो अशार पढ़े थे और जिनका ये वाकया है, तो वो अपने बेटे से अपनी जाती जरूरत की ही चीजें लेते थे और उसकी माँ की जरूरत की चीजें लेते थे और शायद उसकी फुप्पी की जरूरत चीज लेते थे, बस जरूरत की चीज लेते थे, और उसके ऊपर वो जो बेटे साहब थे, ठीक है ना, वो भी तो सहाबी थे ना, वो भी तो मुसलमान ही थे ना, बेटा भी तो मुसलमान और सहाबी ही था ना, राइट, तो उनसे गलती हो रही थी, नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाह फरमा दी, राइट, बेटे भी तो एक ईमान वाले सहाबी थे ना, लेकिन इंसान से गलती हो जाती है, सहाबा से भी गलतियां होती थी, लेकिन सहाबा की जो बेहतरीन बात थी जिसने उनको सहाबा बना दिया वो ये थी कि वो नबी अलैहिस्सलाम की बात सुनते थे, मानते थे और अपनी गलती की इसलाह कर लेते थे, अपनी गलती को दूर कर लिया करते थे, तस्लीम कर लिया करते थे अपनी गलती को। ठीक है, इसी बात ने उनको सहाबी बना दिया। सहाबी का मतलब ये नहीं है परफेक्शन, जो कि बिल्कुल जो है ना वो गुनाहों से पाक होते थे, गलती से पाक होते थे और गोया कि माँ के पेट से जो है वो परफेक्ट पैदा हुए थे, तो ये लोग सहाबी होते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है ना, सहाबा में सहाबा की ये खास बात नहीं थी, सहाबा इंसान थे, सहाबा से भी जो है गलतियां होती थी, गुनाह भी हो जाते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उनकी इसलाह करते थे, वो अपनी इसलाह जो है वो मान लिया करते थे, गलती तस्लीम कर लेते थे, तौबा कर लेते थे और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जान निछावर करते थे, कुर्बान होते थे। ये फर्क है हम में और उनमें। ठीक है ना, हम गलती नहीं मानते, हम जो है वो तौबा नहीं करते। ठीक है ना, ये फर्क है हम में और उनमें। सही है, और दूसरा ये कि जाहिर है हमें नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत मैसर नहीं है, उनको मैसर थी। तो वो परफेक्ट स्टूडेंट, वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे, वो परफेक्ट स्टूडेंट्स थे। ठीक है ना, वो परफेक्ट लर्नर्स थे। ठीक है, ये उनकी बात है। तो बहरहाल ये जो हदीस है, ये फिर वही जिस तरह से बाकी हदीसें हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं और हम उनको जो है वो अपने बस अपने ज़ात के लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरे को जो है ना वो कोई फ़ायदा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से इस हदीस को भी यही इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं भी बस चाहे जो भी करें माँ बाप, तो ऐसा नहीं है। तो फुकहा जिन्होंने असल में दीन को समझा है, अहकामात को समझा है, हुकूक को समझा है, तो उन्होंने फिर क्या तफसीर करी कि इससे मुराद नानफका है। नानफका का मतलब क्या होता है? जरूरत की चीजें। ठीक है ना, जो कि मुनासिब तरीके से गुजारा करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो नानफका कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इससे जो है वो मसले की मजीद तफसील लिखते हैं कि जो काम शरअन वाजिब हो और माँ बाप उससे मना करें तो उसमें उनकी अताअत जायज नहीं है। ठीक है, मसलन किसी शख्स के पास माली वसअत इस कदर कम है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे ये मिसाल नहीं लिखी, मसलन नमाज पढ़ना जो है वो शरअन वाजिब है और माँ बाप उससे मना करें, क्योंकि ये बात पहले से पता है लोगों को। ठीक है ना, ये बात जो है ना वो बदीही है, बिल्कुल एविडेंट है, क्लियर है। ठीक है कि जैसे नमाज पढ़ना वाजिब है तो अब जो है वो माँ बाप नमाज पढ़ने से मना करें। ठीक है, हालांकि ये बात एक मिसाल है ये कि नमाज पढ़ने से मना करें, लेकिन भाई जब ये सबको पता है पहले से तो फिर अब क्यों बयान करें ये वाली बात? ऐसी बात क्यों नहीं बयान करें? लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सफ़ा जो है वो उसकी एक लिमिटेड वसत होती है ना, कितना उस सफ़ा के अंदर आप चीज़ें लिख सकते हैं। किताब भी लिमिटेड होती है ना, एक मुख्तसर किताब होती है तो फिर लोग पढ़ लेते हैं उसको, अगर आप हर चीज़ लिखते चले जाएंगे तो फिर किताब इतनी मोटी हो जाएगी कोई पढ़ ही नहीं सकेगा उसको। तो फिर ऐसी बात क्यों ना करें जो कि लोगों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो। ठीक है, तो रेलिवेंट बात जो थी ना वो क्या थी कि किसी शख्स के पास माली वसत इस यानी जिसमें लोग कन्फ्यूज हैं, जिसमें लोग गलत फहमी का शिकार हैं, वो समझाए ना फिर। ठीक है, तो ऐसी मिसाल दी कि किसी शख्स के पास माली वसत इस कदर कम है कि अगर माँ बाप की खिदमत करे तो बीवी बच्चों को तकलीफ होने का खतरा हो, तो उस शख्स के लिए जायज नहीं कि बीवी बच्चों को तकलीफ दे और माँ बाप पर खर्च करे। ठीक है, इसी तरह बीवी को यह हक हासिल है कि वो अपने शौहर से यह मुतालबा करे कि वो उस अलहदा रिहाइश का बंदोबस्त करे। बीवी अगर ये मुतालबा करे तो शौहर पर वाजिब है कि वो उसके लिए रिहाइश का अलहदा इंतजाम करे। उसकी तरफ से मुतालबे के बावजूद अलग रिहाइश का इंतजाम ना करना शौहर के लिए जायज नहीं, अगरचे माँ बाप अलहदा करने पर राजी। ठीक है, अब बहुएं तो जो है ना वो बगलें बजा रही होंगी और सासें जो है ना वो यार ये तो बड़ा मसला हो गया अब। तो इस वजह से हम ना तो सासों को बहुत ज्यादा मायूस करना चाहते हैं ना बहुओं को बहुत ज्यादा खुश करना चाहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, खुश होना चाहिए, खुश करना भी चाहिए, मोमिन को जो है वो खुश करना जो है वो सवाब का काम है, लेकिन ऐसा खुश नहीं कि वो उल्टा सास के जुल्म के जवाब में अब जो है वो अब बहू का जुल्म शुरू हो जाए। ठीक है, तो जुल्म से तो हर एक को बचाना है ना, आपको आपकी हकीकी खुशी जो है वो मतलूब है कि आप दुनिया में भी खुश रहें और आखिरत में भी खुश रहें। अगर ऐसा हुआ कि दुनिया में तो बड़ी खुश हो गई और आखिरत में जो है ना फिर अफसोस करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर ऐसी खुशी तो हमें नहीं चाहिए आपके लिए। इस वजह से इसकी तफसीर भी सुन लें कि तकलीफ तकलीफ क्या चीज़ होती है। ठीक है, कि अगर माँ बाप की खिदमत करें तो बीवी बच्चों को तकलीफ होने का खतरा हो, ठीक है, तो उसके लिए जायज़ नहीं कि बीवी बच्चों को तकलीफ दे। तो भाई तकलीफ जो है ना ये भी उसी देखिए जिस तरह से ज़रूरत वाली चीज़ थी, ठीक है ना, ज़रूरत की कितनी सारी तफसील बयान करी ना कि अकल शरीफ हो और इल्म सही हो तब आप जो है वो ज़रूरत डिफाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से तकलीफ को भी डिफाइन करना होगा। तकलीफ क्या चीज़ होती है, तकलीफ की डेफिनेशन दो लफ्ज़ों में अगर आपसे पूछें या चार लफ्ज़ों में चले बता दें, तकलीफ क्या चीज़ होती है, हाउ विल यू डिफाइन तकलीफ। जी, तकलीफ की एक जामे माने डेफिनेशन तारीफ, तकलीफ क्या चीज होती है। बहुत ही हस्बैंड पेरेंट्स के नहीं, तकलीफ की पहले तारीफ करें उससे बाद फिर बात करेंगे आप। आपका ये इतना लंबा मैसेज उसके बाद पढ़ेंगे। तकलीफ किस चीज़ को कहते हैं, तबीयत पर नागवार गुजरना किसी बात का, इसको तकलीफ कहते हैं। ये इनका जवाब है, तबीयत पर नागवार गुजरना किसी बात का। अच्छा, जिससे खुशी हासिल ना हो। अच्छा, जिस काम को वो ना कर सकता हो उसका बोझ डाल देना, हक तलफी होना। ठीक है, किसी के जुल्म को नाजायज बर्दाश्त करना। नाजायज बर्दाश्त करना तकलीफ होता है भाई, तकलीफ तो उठाना की तारीफ ही होगी, किसी के जुल्म को नाजायज बर्दाश्त करना, ये तो तकलीफ उठाने की तारीफ आपने कर दी है। बहरहाल चलिए ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। मुख्तलिफ ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है, तकलीफ जो है वो आप इस तरीके से बयान कर सकते हैं इनमें, लेकिन हम जो क्लास के अंदर जो अभी बात कर रहे हैं ना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर तकलीफ की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि अभी हमने इतना टाइम लगा करके आपको लफ्ज़ ज़रूरत समझाई है, ज़रूरत, ठीक है, तो तकलीफ जो है ना वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी डेफिनेशन ये होगी कि जब इंसान की ज़रूरत पूरी ना हो। जज़ाकुमुल्लाह, इन्होंने लिख दिया बोलने से पहले, ठीक है, जरूरत पूरी ना हो तब इंसान को तकलीफ होगी, ठीक है ना। हम ये ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे इस वक्त, बोझ डालना, अल्लाह ताला किसी के ऊपर बोझ नहीं डालता उसकी वसत के से ज्यादा, ठीक है, तो वो तकलीफ की तो असल लुगवी डेफिनेशन तो वही है कि बोझ किसी के ऊपर पड़ जाए, ठीक है ना, लेकिन हमारा जो बात डिस्कशन हो रही है तो उस डिस्कशन के अंदर तकलीफ की डेफिनेशन क्या होगी कि जरूरत पूरी ना हो रही हो तब इंसान को तकलीफ होती है, एक मुनासिब जरूरत, ठीक है, जैसे कि 3 दिन तक जो है वो एक खजूर के ऊपर गुजारा, ठीक है ना, तो अब एक खजूर के ऊपर 3 दिन तक गुजारा जो जो कर रहा है तो उसको जो है ना वो पैंग्स ऑफ हंगर कहते हैं ना, उसको पैंग्स ऑफ हंगर ही कहते हैं, जो पेट में जो है वो दर्द भूख की वजह से जो दर्द होगा उसको 3 दिन तक शदीद कस्म का, ठीक है ना, तो ये उसके ऊपर तकलीफ होगी। ये नहीं कि जी मौत आएगी उसको 3 दिन के बाद तब जो है ना वो मौत आ जाना उसकी तकलीफ हो गई, ठीक है, नहीं, मौत नहीं, बल्कि 3 दिन तक जो उसको दर्द हो रहा होगा इस वजह से उसके लिए मुनासिब जरूरत जो है ना वो 2 वक्त का खाना है, ठीक है ना, और थोड़ी सी दरमियान में स्नैक्स वगैरह टाइप की कोई चीज, तो ये उसको तकलीफ से बचाने के लिए कि उसको पैंग्स ऑफ हंगर जो है ना वो फील ना हो, पेट के अंदर जो है ना वो पेट उसका खिंच ना रहा हो, भूख की वजह से वो खिंचता है, तो ये उसकी तकलीफ होगी। क्योंकि उसकी जरूरत जो है ना, मुनासिब जरूरत कितनी है कि दिन में 2 वक्त का जो है वो प्रॉपर खाना, और तीसरी, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं ना, मेरा अपना, तीसरी दफा, तीसरी वक्त जो है ना वो कुछ स्नैक टाइप की चीज, ठीक है। तो ये होगी तकलीफ, वरना वरना अगर ये तकलीफ ना हो तो फिर तो माशाल्लाह है, एक से एक है। ये मेरा एसी खराब हो गया, एसी जो है वो इस टेम्परेचर के ऊपर नहीं चल रहा तो मुझे तकलीफ हो रही है, राइट। किसी का जो है ना एक एक ही कमरे के अंदर मियाँ बीवी रहते हैं, तो उनको जो है वो गर्मी ज्यादा लगती है, इनको जो है वो सर्दी ज्यादा लगती है ना, तो इनको जो है वो हीटर के ज्यादा चलने की वजह से तकलीफ हो रही है, उनको एसी के ज्यादा चलने की वजह से तकलीफ हो रही है, ठीक है ना। इनको जो है वो फलाने किस्म का मजाक पसंद है, दूसरी जो है, दूसरी को जो है वो फलाने किस्म का मजाक पसंद है। अब इनके मजाक के डेफिनेशन के मुताबिक मजाक नहीं हुआ तो इनको तकलीफ शुरू हो गई, उनके डेफिनेशन के मुताबिक मजाक ना हुआ तो उनको तकलीफ शुरू हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से तकलीफ जो है ना, फिर तो माशाल्लाह एक से एक माशाल्लाह छुई मुई किस्म के लोग मौजूद होते हैं। आजकल तो तादाद भी बढ़ गई है, पहले भी शायद कम होती थी, अब जो है ना वो टच मी नॉट्स जो है वो एक से बढ़कर एक, राइट, नखरे, नाज और ना जाने क्या क्या। तो फिर इस तरह से तकलीफ, तो फिर यानी हर बंदे को ही तकलीफ है, क्योंकि शुक्र जो है वो कोई भी नहीं करता, नेमतों के ऊपर शुक्र कोई भी नहीं कर रहा, तो हर बंदा ही तकलीफ के अंदर है, इसका मतलब है, ठीक है ना। तो इस वजह से बीवी बच्चों को तकलीफ होने का खतरा हो, तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा कि बीवी बच्चों के जो है ना वो नाज और नखरे और उनकी टच मी नॉट वाली जो उनके मिजाज हैं, तो उसका अगर खतरा हो ना तो फिर माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर तो माँ बाप, तो फिर उनको फिर ओल्ड पीपल्स होम के अंदर ही डाल करके आओ भाई, है ना। क्योंकि बीवी बच्चों के नाज नखरे जो हैं वो तो फिर कभी भी पूरे नहीं होंगे, तो फिर माँ बाप की तो कोई जगह नहीं बचती है ना उसके बाद, उनको तो फिर कहीं और डाल करके आओ, ठीक है। तो इस वजह से ना जरूरत का पूरा ना होना, और जरूरत पहले बात हो चुकी है इसी क्लास के शुरू में, के अंदाज, माहौल, मुआशरा, जिस दौर में आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इसकी सही कैलकुलेशन के लिए अकल का शरीफ होना और इल्म का सही होना, ये दोनों चीजें लाजिमी है, ठीक है। देखें, बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि पता नहीं किस किस्म की जो है ना वो फलसफियाना बातें कर रहे हैं, राइट, कहाँ कहाँ से जो है वो मुश्किल मुश्किल जो है वो खामखा की चीज, आसान चीज़ों को मुश्किल बना रहे हैं। लेकिन ये फलसफियाना बातें वो होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में रेलिवेंट ना हो। क्या इस बात की रेलिवेंस नहीं है आपके घर के अंदर, आपके घर में? हाँ, अगर माँ बाप के बगैर रहती हैं, बिल्कुल जो है वो यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कोई रमक भी नहीं आपके जब आपके घर के अंदर, तो फिर आपके लिए इररेलेवेंट बात होगी। लेकिन अगर आपके घर के अंदर आपके सास ससुर साथ रहते हैं, या आपके जो है वो औलाद आपके साथ रहती है, ठीक है ना, और उनके जो है वो बहू और बेटा और दामाद और नवासे और पोती अगर कोई इस किस्म के लोग साथ रहते हैं, तो फिर दिस इज 100% रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, 100% रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कि भाई जरूरत को गेज करना है, कि जरूरत को कैलकुलेट करना है और उसके हिसाब से आपको काम करना है, अगर आप जो है ना वो दुनिया और आखिर दोनों में खैर चाहती हैं तो, ठीक है। तो तकलीफ का खतरा हो तो उस शख्स के लिए जायज नहीं है कि बीवी बच्चों को तकलीफ दे और माँ बाप पर खर्च करे, ठीक है, तकलीफ देते हुए माँ बाप पर खर्च करे, ये उसके लिए जायज नहीं है। इसी तरह बीवी कोई हक हासिल है कि अपने शौहर से मुतालबा करे कि उसके लिए अलाहिदा रिहाइश का बंदोबस्त करे। अब अलाहिदा रिहाइश, ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि शौहर साहब अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। शौहर की कमाई ही इतनी नहीं कि आपके लिए अलाहिदा रिहाइश का बंदोबस्त करे, तो फिर दिस इज नॉट अप्लीकेबल, ठीक है ना। बल्कि बल्कि उससे भी पहले जो है ना वो ये डिफाइन करना करना जरूरी है कि अलाहिदा रिहाइश का मतलब क्या है, अलाहिदा रिहाइश का मतलब क्या है। इसका मतलब जो है वो थ्री बेडरूम अपार्टमेंट है कि इसका मतलब जो है वो विला है, कि इसका मतलब जो है वो महल है, राइट, या इसका मतलब जो है वो कॉन्डो है, कॉन्डो समझते हैं, एक जिसके अंदर खाली एक हो कमरा और उसी के साथ जो है वो अटैच बाथरूम हो और बस किचन हो, या नहीं कॉन्डो तो खैर उसको नहीं, उसको तो लॉफ्ट कहते हैं ना, कॉन्डो भी जो 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 अपार्टमेंट्स होते हैं उन्हीं को कॉन्डो का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल एक कमरे का हो, दो कमरे का हो, तीन कमरे का हो, जिसकी अलग एंट्रेंस हो, जिसका अलग किचन हो, जिसका अलग बाथरूम हो, क्या अलहदा रिहाइश से ये मुराद है या अलहदा रिहाइश से बेडरूम मुराद है? जस्ट वन बेडरूम जिसके अंदर के मियाँ बीवी जो है ना वो दरवाजा बंद करके जो है वो रह सके, बीवी साहब की जो है ना वो अपनी पर्सनल जो 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 उनकी जरूरियात की चीजें हैं वो उस बेडरूम के अंदर इस तरह से रह सकें कि अगला कोई दूसरा फर्द जो है ना वो आराम से टहलता हुआ अंदर आकर के उनकी चीजें जो है वो ना ले सकता हो, ठीक है? क्या ये उसकी अलहदा रिहाइश की ये डेफिनेशन, ठीक है ना? तो अलहदा रिहाइश की कम से कम डेफिनेशन तो यही है, अलग बेडरूम का होना, ठीक है ना? अलग बेडरूम का होना ये अलहदा रिहाइश की कम से कम डेफिनेशन है। क्या मतलब कि ऐसा ना हो जिस तरह से कोई झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर जो है ना वो एवरीवन इज वॉकिंग थ्रू और जो है वो चलते फिरते जो है वो लोग अंदर देख रहे हैं, मियाँ बीवी जो है वहीं पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना? ऐसा ना हो, और ना जो है वो घर के अंदर जो है पता चला कि ड्राइंग रूम के अंदर सो रहे हैं और ड्राइंग रूम में जो है वो कभी कोई चलता हुआ आ रहा है, कभी कोई चलता हुआ आ रहा है, राइट, या लाउंज के अंदर जो है वो खुले हुए हैं, ठीक है, लाउंज के अंदर जो है वो मियाँ बीवी का बिस्तर लगा हुआ है, ठीक है, या ये कि बेडरूम है तो दरवाजा बंद करने की इजाजत नहीं है। ये मिसाली सास के टॉपिक के अंदर हम ये सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है ना? कि कितने ऐसे घराने हैं कि जिनके अंदर सास साहिबा का हुक्म, राइट, माँ है पैर तले जन्नत है ना भाई, ठीक है ना? तो अब बीवी तो पैर तले जन्नत का मुकाबला नहीं कर सकती उसके, तो बीवी के पैर तले जन्नत वाली तो हदीस है ही नहीं, राइट? तो अब माँ साहिबा ने कह दिया कि जी बेडरूम का दरवाजा बंद नहीं होगा, तो वो पैर तले जन्नत तो बेगम साहिबा तुम्हारी जन्नत तो माँ के पैर तले है, तो अब तुम भी माँ के पैर तले रहो, तुम्हें भी जन्नत मिलेगी, मुझे भी जन्नत मिलेगी, ठीक है? हाँ स्टूडियो अपार्टमेंट बोला मेरे मुंह में नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग ठीक है, जदाकुमार, स्टूडियो अपार्टमेंट कहना चाह रहा था, सन लॉफ्ट भी कहते हैं उसको। तो अब जो है वो बेडरूम का दरवाजा बंद करने की इजाजत नहीं है, ठीक है ना? तो ये तमाशे हमारे चल रहे हैं ना, और ये किसकी बुनियाद पर, ये शेक्सपियर को कोट करता है कोई कि बीवी के माँ के पैर तले जन्नत है, इस वजह से मुझे माँ की बात माननी जरूरी है, शेक्सपियर को कोई कोट करता है, राइट? ये शेक्सपियर का कॉल है, किसका कॉल है? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, ठीक है ना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल का मतलब क्या होता है? दीन, राइट, दीन। तो दीन को इस्तेमाल करते हैं ना हम अगले बंदे पर जुल्म करने के लिए, दीन को इस्तेमाल करते हैं बीवी पर जुल्म करने के लिए, ठीक है? तो इसी वजह से तो बदबस्ती आई हुई है सारी के सारी हमारी। बहरहाल तो अलहदा रिहाइश भी डिपेंड करता है ना कि शौहर की कितनी वसत है। अब शौहर साहब के पास वसत तो है कि वो बीवी के लिए अलग अपार्टमेंट का बंदोबस्त कर सके, ठीक है, लेकिन वो उस पैसे को क्रिकेट मैच देखने के लिए इस्तेमाल करता है ना? दुबई जाओ कि मुझे PSL देखना है, ठीक है ना? तो वो बीवी के लिए अलग अपार्टमेंट का इंतजाम नहीं कर रहा, बल्कि दुबई जाकर के जो है ना वो बदबخت खेल क्रिकेट, जिससे मुझे नफरत है, शदीद नफरत, पहले नहीं थी, जिंदगी जाया करी, अल्लाह माफ करे उसके ऊपर हम सबको, लेकिन जब से बात समझ में आई क्रिकेट जैसे खेल से तो नफरत शदीदा हो गई है, शदीद नफरत हो गई है, ठीक है? वो भी आपकी क्लास के दौरान ही हुई थी बुद्ध के, राइट, यानी क्लास पढ़ाने के दौरान ही ये अल्लाह ताला ने बात बोली थी कि क्रिकेट कितनी कितनी जो है ना वो गुलामी का तौक है जो कि हमारे गले के ऊपर पड़ा हुआ है, और कितना बेहुदा और बेकार किस्म का खेल है ना, जिसका कोई जो है ना वो शरीयत के अंदर अंदर जवाब नहीं बन सकता इस खेल का। बहरहाल तो इस वजह से मैं क्रिकेट को अक्सर इस्तेमाल करता रहता हूँ की बात के अंदर। तो अब वो जो बीवी के लिए इंतजाम तो कर नहीं रहा, और उसके लिए जो है ना वो अच्छा बीवी को लेकर के जा रहा है, या ना नहीं लेके जा रहा हो बीवी को, या लेके जा रहा हो अमेरिका जा रहा है, और पता नहीं कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके लिए अपार्टमेंट का इंतजाम नहीं कर सकता, तो बीवी को हक है कि वो अपने लिए अलहदा रिहाइश का डिमांड करे, और अगर वो उस हक को पूरा नहीं करता उसका शौहर, तो वो गुनाहगार है, और गुनाह का मतलब होता है पिटाई, तो यानी पिटाई का मुस्तहिक है। ठीक है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, अगर तौबा नहीं करेगा तो आखिरत में भी पिटाई होगी, और दुनिया में तो पिटाई फौरन शुरू हो जाती है। तो वो उसके लिए रिहाइश का अलहदा इंतजाम करे, उसकी तरफ से मुख्तार। अच्छा, असल जो टॉपिक से रिलेटेड जो जुमला है ना, जो की वर्ड है, जो की सेंटेंस है इसके अंदर, के उसकी तरफ से मुतालबे के बावजूद अलग रिहाइश का इंतजाम ना करना शौहर के लिए जायज नहीं है, अगरचे माँ बाप अलहदा करने पर राजी ना हो। अगरचे माँ जिसके पैर तले जन्नत है, बाप जिसकी रजा में अल्लाह की रजा है, जिसकी रजा में अल्लाह की रजा, ये भी हदीस मुबारक ही है ना, जिसकी रजा में अल्लाह की रजा है बाप, ठीक है, अगरचे कि ये दोनों के दोनों राजी ना, फिर भी उसके ऊपर वाजिब है। वाजिब कहाँ से आया? ये भी कोई शेक्सपियर का कॉल होता है जो वाजिब करार देता है। वाजिब की डेफिनेशन कहाँ से आती है? दीन से आती है, और दीन जो है ना वो मौलवी साहब का बनाया हुआ नहीं है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम का बताया हुआ है, और मौलवी साहब का समझाया हुआ है। दीन क्या है? अगर अल्लाह करे आप लोग लिख रही हूं उन बातों को, दीन क्या है? अल्लाह का बनाया हुआ, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम का बताया हुआ, और मौलवी साहब आलिम साहब, ठीक है ना, मौलवी साहब से मुराद वो नहीं जो दाढ़ी रखी हुई है और नमाज पढ़ा देते हैं बस, नहीं, आलिम साहब का समझाया हुआ, ठीक है ना, तो वाजिब, ये दीन से मिलता है, ये दुनिया की डेफिनेशन नहीं है वाजिब का होना, ठीक है। तो ये एक हदीस जो है वो आज हमने करी है, तो बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर करेंगे। कोई और किसी का सवाल हो? आपका कोई जो लंबा सा एक था वो शायद मैंने पढ़ा भी नहीं, स्क्रॉल अप करना होगा। उन्होंने लिखा था कि बहुत से हस्बैंड पेरेंट्स के अंदर में ही कोई काम कर रहे होते हैं, अंडर में ही कोई काम कर रहे होते हैं, बहुत से हस्बैंड्स पेरेंट्स के अंडर में ही कोई काम कर रहे होते हैं, अगर पेरेंट्स की बात नहीं सुनते तो वो उससे काम या दुकान ले ले, फिर हस्बैंड जॉबलेस हो जाए तो कैसे हैंडल करें उसको? फिर हस्बैंड जॉबलेस हो जाएगा, कितने अच्छे मोहब्बत करने वाले पेरेंट्स हैं ना, है ना, कितने अच्छे नेक पेरेंट्स हैं, मोहब्बत करने वाले पेरेंट्स हैं, कि अगर जो है वो अल्लाह की फरमा बरदारी उनकी औलाद करेगी है, और उसकी वजह से अगर जो है वो ना, यानी माँ बाप का कोई जायज़ हुक्म नहीं मानेगी तो वो जॉब से निकाल देंगे। माशाल्लाह, कितने बेहतरीन आइडियल पेरेंट्स हो ये तो, ठीक है। तो जॉब से निकलना ये हराम करने की, इस हराम का काम करने की ये कोई जायज़ वजह नहीं है कि भाई वो जॉब से फारग कर देंगे, इस वजह से मैं हराम करने के ऊपर मजबूर हूँ, ठीक है, ये तो नहीं है ना, ठीक है ना, क्यों? इसलिए कि जॉब जो होती है ना, नौकरी जो होती है, वो उसके बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, कमाई के बहुत सारे मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने जराए रखे हुए हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जॉब है, अगर ये गई तो फिर वापस नहीं आएगी, कोई जॉब फिर मिलेगी नहीं, कमाई हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो जॉब जो है ना, ये यानी सुअर खाने के लिए शरीयत के अंदर ये गुंजाइश नहीं है कि जॉब चली जाएगी तो सुअर भी खा लेना, है, जिंदगी चली जाएगी तो सुअर खाना भी जायज़ है, शराब पीना भी जायज़ है, क्यों? इसलिए कि जिंदगी अल्लाह ताला ने एक ही बनाई है, ठीक है ना, जिंदगी दो नहीं बनाई, जिंदगी के मल्टीपल वेन्यूज नहीं होते कि एक जिंदगी चली जाएगी तो कोई बात नहीं, कहीं और से लेकर के आ जाना, है ना, कोशिश करोगे तो दूसरी जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन जॉब के साथ क्या मामला है कि जॉब के लिए तो अनलिमिटेड जराए, राइट, इधर से खत्म हो उधर मिल जाएगी, उधर से खत्म हो उधर मिल जाएगी, इधर भी अप्लाई कर सकते हो उधर भी अप्लाई कर सकते हो, इधर भी जो है वो लोगों से परे कर सकते हो कि मैं किस किस्म का काम कर सकता हूँ मैं, ना बहुत सारे आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के अंदर फर्क समझे, ठीक है। जिंदगी ये दोबारा नहीं मिलती, अल्लाह ताला ने उसके लिए फिर गुंजाइश रख दी कि जिंदगी के जाने का अगर तुम्हें हो जाए ना पक्का, तो फिर तुम सूअर भी खा सकते हो, यानी हराम कर सकते हो, ठीक है ना, जिंदगी। लेकिन जॉब, ठीक है। तो भाई ये जो इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, ये बिल्कुल 100% कसूरवार होते हैं, यानी जो आप जिन हस्बैंड्स की बात कर रही हैं ना, ठीक है ना, कि ये है ना बड़े मासूम बनते हैं, बड़े मजलूम बनते हैं कि जी हम तो मजबूर हैं और हम तो जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते और हमारे पेरेंट्स जो है ना वो बस क्या करें, उन्होंने धमकी दी हुई है और ये वो, ठीक है। बड़े मजलूम बनते हैं, बड़े मासूम बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मासूम नहीं होते, ये मजलूम नहीं होते, ये जालिम होते हैं, ये जालिम होते हैं। क्यों? इसलिए कि ये इल्म नहीं हासिल करते, ये इल्म वालों से नहीं जुड़ते, ठीक है ना, ये इनका जुल्म है। ये अगर इल्म वालों से जुड़ें, ये अगर इल्म हासिल करें, तो फिर इनके सामने खुल जाएंगे ऑप्शंस कि ये भी किया जा सकता था, ये भी किया जा सकता था, ऐसे भी। अच्छा, खाली ये नहीं कि माँ बाप की के साथ क्या कहते हैं कि खाली ये ऑप्शंस नहीं खुल जाएंगे कि जॉब निकल जाएगी तो और कौन सी जॉब की जा सकती है, खाली ये ऑप्शंस नहीं। इल्म हासिल करने से और इल्म वालों से जुड़ करके रहने से खाली ये ऑप्शन नहीं खुलते कि अगर बाप ने जॉब से निकाल दिया तो फिर दूसरी जॉब कैसे मिलेगी, नहीं, बल्कि ये भी ऑप्शंस खुलते हैं कि माँ बाप से बिगाड़ किए बगैर कैसे आप हलाल जिंदगी गुजार सकते हैं, माँ बाप से टक्कर लिए बगैर भी आप कैसे हलाल के ऊपर जिंदगी गुजार सकते हैं, जायज तरीके के ऊपर कायम रह सकते हैं, ये भी ऑप्शंस खुलते हैं। लेकिन ये कमबख्त लोग जो है ना, यानी आप मेरे जज्बात को तो आप नहीं कर सकते, तस्वुर नहीं कर सकते। बस में होता तो इससे भी गंदी जुबान इस्तेमाल करता, अगर बस में होता इससे भी ज्यादा बुरी जो है ना वो ऐसे लोगों के लिए शदीद किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता, क्योंकि यू कैनॉट इमेजिन कितना गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर जो कि जाहिल रहने को जो है ना वो तरजीह देते हैं और फिर उसके ऊपर मजलूम बनते हैं कि दूसरे ने जुल्म कर दिया, दूसरे ने जो है वो ये कर दिया, दूसरों के जो है ना वो शिकायतें करते हैं और सारा जो इल्जाम जो है ना वो दूसरे के ऊपर डालते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो खुद कितने बड़े जालिम हैं। इख्तियारी जहालत, इख्तियारी जहालत, उन्होंने खुद जहालत को इख्तियार किया हुआ होता है, राइट, और शिकायतें दूसरों की करते हैं आप, यानी इतना दिल जो है वो खराब हुआ हुआ है ऐसे लोगों से। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना खाली अपनी जाती जिंदगी भी नहीं खराब करते, बल्कि कितने लोगों की जिंदगी खराब करते हैं, कितने लोगों के लिए वो अजियत बनते हैं और जो है ना वो, यानी कितने लोगों के लिए तकलीफ का बाइस बन रहे होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। लेजी वेजी कोई नहीं होते, जिद्दी होते हैं। इन्होंने लिखा कि असल में खुद लेजी और कामचोर होते हैं, नहीं, लेजी नहीं होते, ये जिद्दी होते हैं, ये हट धर्म होते हैं, ये हट धर्म, लेजी और मुतकब्बिर होते हैं ये, जो कि इल्म हासिल करने से जो है ना वो कन्नी कतराते हैं और अवॉइड करते हैं उसको, और उसके ऊपर जो है ना वो इल्जाम दूसरों को देते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। वा आखिर दुआना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।